नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे घर नन्हासा मेहमान आता है, कोई बच्चा पैदा होता है, उस समय अगर डॉक्टर उसकी लिंग बता ना सके तो, या फिर यूं कहें कि यौवनावस्था तक लड़की की तरह पले बड़े बच्चे को अचानक पता चले कि वह लड़की नहीं बल्कि कुदरती रूप से लड़का है, आप अचंभे में पड़ गए होंगे ये बात सुनकर। मैं भी हैरान हो गई थी जब मैंने डोमिनिकन गणराज्य के सालिनास गांव के बारे में जाना। इस गांव में एक खास प्रकार के आनुवांशिक विकार की वजह से 90 में से एक बच्चा यौवनावस्था तक नहीं जान पाता कि उसकी लिंग क्या है। इस आनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर को जिविडोसिस नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ पेनिस एट 12 होता है। ग्रामीण लोग इस विकार को माची हेम्ब्रास के नाम से जानते हैं, जिसका उस भाषा में अर्थ होता है पहले महिला बाद में पुरुष। हालांकि डोमिनिकन गणराज्य में महिला से पुरुष बनने के बदलाव को एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, ताकि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो उस दौर से गुजर रहे बच्चे के लिए आसान हो जाए। इस विकार के ज्यादातर लक्षण अभी तक तो अफ्रीका में ही पाए गए थे, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में पापा न्यूगिनी में भी इस प्रकार के लक्षण बच्चों में देखे गए हैं। इस जिविडोसिस विकार के बारे में सबसे प्रथम बार जो जानकारी मिली वो 1970 के समय में कॉर्नल विश्वविद्यालय के डॉक्टर जूलियन इम्प्रास्टो ने हासिल की थी। जब वह अफ्रीका के इस गांव के बारे में उन्होंने सुना कि वहां पर लड़कियां अचानक से लड़का बन जाती है, तो इस बात का तथ्य जानने के लिए वह गए सालिनास गांव में। और पिछले वर्ष बीबीसी ने भी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें डॉक्टर माइकल मोजली ने इस विषय पर ज्यादा संशोधन पर जोर दिया था। इस गांव में आपको बहुत सारे लड़के ऐसे मिलेंगे जिसका नाम कैथरीन, फ्लोरेंसिया या मैरी हो। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस विकार के बारे में, इस जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में, डॉक्टर फरहत जहां से, जो जनरल प्रैक्टिशनर भी हैं और बाल रोग निष्णात भी हैं। डॉक्टर जहां, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
शुक्रिया हरिता।
तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो विकार जिसके बारे में हमने सुना कि लड़कियां अचानक से लड़का बन जाती है, वो क्या वास्तव में होता है?
हाँ जी, ये होता है। जो अभी तक जो रिसर्च हुई है इस चीज के बारे में, ये एक्चुअली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये बच्चे जो हैं वो ये जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। ये जीन जो मेल बच्चा जो इफेक्ट होता है, वो एक जीन अपनी माँ से और एक अपने बाप से इनहेरिट करता है। अब जो मेल और फीमेल सेक्स का पता जो है वो माँ की कोख में ही चल जाता है। माँ की कोख के अंदर जो है वो ये बच्चों के सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब ये मेल बच्चे के जिन में ये म्यूटेटेड जीन्स आई हैं, उनमें एक एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। उस एंजाइम का नाम है 5-alpha reductase। इस एंजाइम का ये काम है कि वो मेल बच्चों में जो टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल हार्मोन है और जो कि हेल्प करता है मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में, यानी पेनिस, टेस्टिकल, उनका मसल मास वगैरह बनाने, उनकी दाढ़ी, जिस्म के बाल, जो कि एक मेल को एक फीमेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है इस मेल हार्मोन की। अब ये एक्टिव फॉर्म बहुत जरूरी है सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए। इन बच्चों में चूंकि एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, इसलिए वो ये कैरेक्टर्स उनमें डेवलप नहीं होते। और जब बच्चा पैदा होता है तो ऑब्वियसली ना आप उनके जो है वो जेनिटल्स मेल की तरह दिखते ही नहीं है, या तो वो फीमेल की तरह दिख रहे होते हैं, या उनका पता ही नहीं चल रहा होता कि ये मेल है फीमेल है। इसको एम्बिगुअस जेनिटेलिया भी कहते हैं। फिर बाद में कोई 12-13 साल पे जब ये बच्चे उम्र को पहुंचते हैं, तो एक दफा से फिर जब प्यूबर्टी होती है, दोबारा एक ग्रोथ होती है, सर्ज होता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज कर जाता है। इस दफा, इस टाइम पे ये बच्चों के जो ऑर्गन्स हैं, टेस्टिकल्स, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं इस नई इंक्रीज अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो उनकी बॉडी में है, तो जिसकी वजह से फिर उनकी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होती हैं, फिर उनकी टेस्टिकल्स, पेनिस, आवाज में चेंज आना, बॉडी मास में, बॉडी मसल्स उनके बनते हैं, तो वो बच्चे एकदम से लगता है जैसे फीमेल से मेल में चेंज हो गए हैं। तो इसके बारे में ये जो सारी रिसर्च है मेनली ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी वगैरह से हुई है, कॉर्नेल जो कि बहुत बड़ा मेडिकल स्कूल है, वहाँ से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे। फिर बाद में बल्कि इसी चीज को मर्क जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है अमेरिका की, उनके भी जो हेड ऑफ रिसर्च थे उन्होंने इसका फायदा उठाया इस रिसर्च का, क्योंकि ये जो एंजाइम है 5-alpha reductase, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से देखा गया कि इन बच्चों में, मेल बच्चों में प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि एक मर्दों में इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, वो भी बड़ा छोटा होता है। अब जब मर्द बड़े होते हैं 50-60 के, तो यही ग्लैंड उनको मसले देना शुरू कर देता है, और वो जो है बड़ा हो के तो इनको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स यूरिन के देने शुरू कर देता है, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहती है। इन्होंने जब ये देखा कि इन बच्चों में ये ग्लैंड बहुत छोटा है, तो उनका ख्याल था कि शायद ये इसी एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से है। उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसी दवा बनाएं कि जो इस एंजाइम को सप्रेस कर दे, उसके फंक्शन को, तो हो सकता है ये जो एडल्ट मेल्स हैं जिनको ये ग्लैंड के बड़े होने की वजह से मुश्किल हो रही है, तो वो इनमें हेल्प करे। और वही हुआ, उन्होंने एक ड्रग बनाई फिनिस्टेराइड के नाम से, जो ऐसे मर्दों में जिनको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, जब वो ये गोली देते हैं तो वो इनके एंजाइम 5-alpha reductase को सप्रेस करता है, और उससे हेल्प मिलती है इस ग्लैंड को श्रिंक करने में, और उससे हेल्प मिलती है इनके सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में। तो ये जो कम्युनिटीज बेसिकली उन्होंने स्टडी की है, ज्यादा डोमिनिकन रिपब्लिक में सेलिनास गाँव में देखा गया है, और फिर उन्होंने पापुआ न्यू गिनी में भी कुछ केसेस पाए गए हैं।
तो डॉक्टर जहां जानना चाहेंगे कि ये जो विकार है जो अब तक एक ही समुदाय में देखा गया है, क्या इस प्रकार के विकार भविष्य में अन्य समुदायों में भी पाए जा सकते हैं या देखा जा सकता है?
देखिए, जो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और बहुत ज्यादा कम्युनिटीज और कंट्रीज की तरफ गई है, कुछ केसेस इन्होंने पापुआ न्यू गिनी में देखे हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक का ये एक विलेज तो उन्होंने स्टडी किया है। उसके अलावा अभी पता चला है कि कुछ केसेस इजिप्ट और टर्की में भी पाए गए हैं। अभी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च होना बाकी है, अभी बहुत सारे, क्योंकि हर कम्युनिटी में इसकी स्टडी होना जरा मेरा नहीं ख्याल इतना मुमकिन भी है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे इसको थोड़ा सा अब आप समझ लीजिए बुरा भी समझा जाता है। बाज दफा हो सकता है किसी कम्युनिटी, किसी फैमिली में इसको डिस्क्लोज ही ना करते हो कि हमारे बच्चों के साथ ये मसला है।
बिल्कुल।
तो हो सकता है अगर ये बातें वो सामने लाएं, डॉक्टरों के पास जाएं, तो फिर और भी केसेस दरियाफ्त हो सकते हैं दूसरे मुल्कों में भी और दूसरी कम्युनिटीज में भी।
जी बिल्कुल, ये हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी जेनेटिकल इश्यू हो, उससे बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी आप?
बहुत से, अब जिस तरह मैंने कहा कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि बच्चे इनहेरिट कर रहे हैं अपने माँ बाप से। अब एक जीन माँ से एक बाप से इस वाले उसमें है, तो बहुत सारे और भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिस तरह के हीमोफीलिया है, जिस तरह के सिस्टिक फाइब्रोसिस है जो बच्चों में, तो इनके लिए पहले तो जिस फैमिली में, जिस खानदान में ऐसे बच्चे हैं, उन माओं को और उन पेरेंट्स को जेनेटिक टेस्टिंग अपनी करा लेनी चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या वो तो वो ऐसी डिफेक्टेड जीन कैरी नहीं कर रहे कि जो आगे चल के उनके बच्चों में मसला क्रिएट कर सकता है। तो कुछ टेस्टिंग तो अवेलेबल है, जिस तरह पेरेंट्स की डीएनए टेस्टिंग हो, वो उन माँ को प्रेग्नेंट होने से पहले ही आप वो टेस्टिंग करा सकते हैं। अगर किसी फैमिली में जो है वो आपने जेनेटिक टेस्टिंग पहले नहीं कराई और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, उस प्रेगनेंसी के दौरान भी टेस्टिंग अवेलेबल है, जैसे प्रीनेटल टेस्टिंग कहते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, जिसपे के अब जिस तरह हम अमूमन 12 हफ्ते में प्रेग्नेंट औरत का अल्ट्रासाउंड करते हैं डाउन सिंड्रोम और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए, तो वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा और टेस्ट हैं जैसे एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, ये सब कुछ प्रेग्नेंट औरत में किए जाते हैं, ये रूल आउट करने के लिए कि इसको बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और उसमें कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं कि जो हम अभी पकड़ सकें अभी उसको देखकर, और डिपेंडिंग कि किस तरह का एबनॉर्मलिटी है, अगर आप चाहें तो आप प्रेगनेंसी को वहां पे डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, वरना सबसे बेहतरीन ये होता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, खानदान में ऐसे बच्चे हैं, तो आपको प्रेग्नेंट होने से पहले ही जीन टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग करवा लेना चाहिए।
जी बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है, और स्पेशली जब मेडिकल साइंस इतना बढ़ गया है तब उसका लाभ हमें लेना ही चाहिए।
बिल्कुल रीता, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, और इसमें खास तौर पे क्योंकि ये फिर सिर्फ मसला आपके लिए नहीं है कि अगर आपके फैमिली में ऐसा बच्चा पैदा होगा कि जो लॉन्ग टर्म केयर आपको भी करनी है, उस बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, उसके लिए भी ऐसी कम्युनिटी में सरवाइव करना कि जहाँ सिर्फ उसमें कोई डिफेक्ट है और इर्द गिर्द उसके हेल्दी बहन भाई घूम रहे हैं, कजन घूम रहे हैं, दोस्त घूम रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल चैलेंज बन जाता है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर जहां SBS हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया रीता, थैंक यू।